नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप अनुज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। आज देशभर में संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन 25 जून 1975 को भारत के संविधान के उल्लंघन के रूप में याद किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आज भारत के लोकतांत्रिक इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक, आपातकाल लागू होने के 50 साल पूरे हो गए हैं। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में द इमरजेंसी डायरी ईयर्स दैट फोर्स्ड अ लीडर नामक पुस्तक का विमोचन करेंगे। देश के बाकी हिस्सों के साथ ही अरुणाचल प्रदेश में भी संविधान हत्या दिवस का आयोजन किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से चीन के किंगदाओ में शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक में एक उच्च स्तरीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। भारतीय अंतरिक्ष यात्री सुभाषु शुक्ला को अंतरिक्ष में ले जाने वाला एक्सियोम 4 मिशन को आज लॉन्च किया गया और मौसम विभाग ने आज देश के कुछ राज्यों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। अब समाचार विस्तार से। आज देशभर में संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन 25 जून 1975 को भारत के संविधान के उल्लंघन के रूप में याद किया जाता है। ये उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि देने का भी दिन है जिन्होंने आपातकाल की ज्यादतियों के कारण कष्ट झेले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज भारत के लोकतांत्रिक इतिहास के सबसे काले अध्याय में से एक, आपातकाल लागू होने के 50 साल पूरे हो गए हैं। भारत के लोग इस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाते हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा है कि इस दिन भारतीय संविधान में निहित मूल्यों को दरकिनार कर दिया गया, मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया, प्रेस की स्वतंत्रता को खत्म कर दिया गया और कई राजनीतिक नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, विद्यार्थियों और आम नागरिकों को जेल में डाल दिया गया था। प्रधानमंत्री ने आपातकाल के दौरान अपने अनुभव के बारे में द इमरजेंसी डायरी लिखी है। इस पुस्तक का आज विमोचन किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने उन सभी लोगों से सोशल मीडिया पर अपने अनुभव साझा करने का आग्रह किया जिन्हें आपातकाल के वो काले दिन याद है जिनके परिवार ने उस दौरान कष्ट झेले थे। श्री मोदी ने कहा कि यह पहल 1975 से 1977 तक के शर्मनाक समय के बारे में युवाओं को जागरूक करेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में द इमरजेंसी डायरी ईयर्स दैट फोर्स्ड अ लीडर नामक पुस्तक का विमोचन करेंगे। ये पुस्तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालती है जब वे उस समय आरएसएस के युवा प्रचारक थे और आपातकाल के खिलाफ लड़ाई में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पुस्तक में लोकतंत्र के आदर्शों के लिए संघर्ष कर रहे श्री मोदी की एक जीवन तस्वीर पेश की गई है और बताया गया है कि किस तरह से उन्होंने अपने पूरे जीवन में लोकतंत्र को बनाए रखने और बढ़ावा देने के लिए काम किया है। ये पुस्तक श्री मोदी के साथ काम करने वाले सहयोगियों के अनुभवों और अन्य अभिलेखियों सामग्रियों पर आधारित है। ये अपनी तरह की पहली पुस्तक है जो एक ऐसे युवा व्यक्ति के प्रारंभिक वर्षों पर नई विविधता पैदा करती है जिसने अत्याचार के खिलाफ लड़ाई में अपना सब कुछ झोंक दिया था। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि यह पुस्तक आपातकाल के वर्षों के दौरान उनकी यात्रा का वर्णन करती है। अरुणाचल प्रदेश ने आज देश के बाकी हिस्सों के साथ संविधान हत्या दिवस मनाया जो 1975 में इसी दिन देश में आपातकाल लागू होने का प्रतीक है। डीके कन्वेंशन सेंटर ईटानगर में आयोजित एक समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड केटी परनायक ने कहा कि यह दिन आपातकाल की अवधि और लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता के किसी भी दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर याद दिलाता है। उन्होंने कहा है कि यह दिन उन लोगों को भी श्रद्धांजलि है जो उस अवधि के दौरान सत्तावाद के खिलाफ खड़े हुए थे। राज्यपाल ने जोर देकर कहा है कि संविधान हत्या दिवस नागरिकों के लिए लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने और मौलिक अधिकारों की रक्षा में संविधान की भूमिका पर विचार करने का एक अवसर है। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री चाउना मेन ने आपातकाल को केवल एक ऐतिहासिक घटना से नहीं अधिक बताते हुए एक चेतावनी, एक जिम्मेदारी और एक सबक कहा जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकता है। उन्होंने कहा है कि आपातकाल का अंत लोकतांत्रिक आत्मसुधार और नागरिक लचीलेपन की ताकत का प्रमाण है। इस अवसर पर राज्यपाल ने एक फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया जिसका उद्देश्य संविधान की पवित्रता और लोकतांत्रिक संस्थाओं को संरक्षित रखने और आवश्यकता के बारे में जन जागरूकता को बढ़ावा देना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से चीन के किंगदाओ में शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक में एक उच्च स्तरीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि अपनी यात्रा के दौरान वे विभिन्न रक्षा मंत्रियों के साथ कई मुद्दों पर बातचीत करेंगे। उन्होंने कहा है कि वे वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए भारत के दृष्टिकोण को प्रस्तुत करने के लिए उत्सुक है और आतंकवाद को खत्म करने के लिए संयुक्त और लगातार प्रयासों का आह्वान भी करते हैं। बैठक के दौरान चीन और रूस के रक्षा मंत्री सहित कई भाग लेने वाले देशों ने अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय चर्चा भी करेंगे। शंघाई सहयोग संगठन 2001 में स्थापित एक अंतर सरकारी निकाय है। भारत 2017 में इसका पूर्ण सदस्य बना था। वर्तमान SCO सदस्यों में कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान, बेलारूस और भारत शामिल है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज घोषणा की है कि दिल्ली व्यापारी कल्याण बोर्ड की स्थापना की औपचारिकताएं पूरी कर ली गई है। नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि बोर्ड केवल एक संस्थान नहीं है बल्कि व्यापारियों पर सरकार के भरोसे का प्रतीक है। उन्होंने कहा है कि व्यापार बोझ नहीं है बल्कि राष्ट्र निर्माण में एक महत्वपूर्ण योगदान है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज उत्तर प्रदेश सरकार को गाजियाबाद जिले जेल के एक आरोपी की रिहाई में देरी के लिए 5 लाख रुपए का मुआवजा देने का निर्देश दिया। आरोपी को इस वर्ष अप्रैल में कथित जबरन धर्म परिवर्तन के मामले में जमानत दी गई थी। गाजियाबाद के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश को घटना की जांच करने का आदेश देते हुए न्यायाधीश केवी विश्वनाथन और एनके सिंह की पीठ ने कहा कि अगर जांच रिपोर्ट में किसी व्यक्ति की जिम्मेदारी पाई जाती है तो मुआवजों का एक हिस्सा संबंधित जेल अधिकारी से व्यक्तिगत रूप से वसूल किया जाएगा। कल न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के जेल महानिदेशक और गाजियाबाद जिला के जेल के वरिष्ठ अधीक्षक को तलब किया था जब आरोपी ने जमानत आदेश में संशोधित की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया था जिसमें यूपी धर्म के गैर कानूनी धर्म परिवर्तन प्रतिशोध अधिनियम 2021 की कुछ धाराओं को विशेष रूप से शामिल किया गया था। भारतीय अंतरिक्ष यात्री सुभाष शुक्ला को अंतरिक्ष में ले जाने वाला एक्सियोम 4 मिशन आज दोपहर 12:01 पर संयुक्त राज्य अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया जो लो अर्थ ऑर्बिट LEO में 14 दिवसीय वैज्ञानिक मिशन पर होंगे। ऑपरेशन सिंधु के अंतर्गत अब तक 818 भारतीय नागरिक इसराइल के स्वदेश लौट चुके हैं। केंद्रीय श्रम रोजगार और MSME राज्य मंत्री शोभा कंदरलाजे ने आज सुबह भारतीय वायुसेना के विमान से इसराइल से भारत लौटे 224 भारतीय नागरिकों की अगवानी की। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है। मौसम विभाग ने तटीय कर्नाटक, गुजरात, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठावाड़ा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मध्य प्रदेश और विदर्भ में अगले 5 दिन हल्की से सामान्य वर्षा हो सकती है। पूर्वोत्तर और पश्चिमोत्तर भारत के साथ छत्तीसगढ़, गांगेय पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और ओडिशा में भी अगले 5 दिन हल्की से सामान्य वर्षा होने का अनुमान व्यक्त किया गया। इधर ईटानगर मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश के 12 जिलों तवांग, ईस्ट कमिंग, वेस्ट कमिंग, पापुमपारे, लोअर सुबनसिरी, ईस्ट सियांग, वेस्ट सियांग, अंजाव, लोहित, चांगलांग, तिरप और लोंगडिंग के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार इन जिलों में अगले 24 घंटों में अलग अलग स्थानों पर गरज के साथ बिजली गिरने और तेज बारिश होने की संभावना है। आज सकारात्मक वैश्विक संकेतों के बीच भारतीय संवेदी सूचकांक 400 अंकों से अधिक की बढ़त के साथ खुला। सेंसेक्स 445 अंकों से अधिक की बढ़त के साथ 82,500 के स्तर पर कारोबार कर रहा था जबकि निफ्टी 130 अंकों के साथ अधिक की बढ़त के साथ 25,174 के स्तर पर कारोबार कर रहा था। शुरुआती कारोबार में IT, ऑटो और फार्मा सेक्टर में खरीदारी देखने को मिली है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आज देशभर में संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन 25 जून 1975 को भारत के संविधान के उल्लंघन के रूप में याद किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा आज भारत के लोकतांत्रिक इतिहास के सबसे काले अध्याय में से एक आपातकाल लागू होने का 50 साल पूरे हो गए हैं। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में द इमरजेंसी डायरी ईयर्स दैट फोर्स अ लीडर नामक पुस्तक का विमोचन करेंगे। देश के बाकी हिस्सों के साथ ही अरुणाचल प्रदेश में भी संविधान हत्या दिवस का आयोजन किया गया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।